हरे कृष्णा। तो कहां रुके थे हम? भक्तों का संग है ना, प्रगत भक्तों की संगति करना, सही है। मणि की चर्चा हो रही थी, हिरण्यकश्यप प्रहलाद को उपदेश दे रहे हैं संघ के बारे में। क्या उपदेश था उनका? मणि का उदाहरण क्यों दिया उन्होंने? वैसे रूप गोस्वामी कहते हैं कि मणि जहां भी जाती है तो पास में जो भी वस्तु है उसका रंग स्वीकार कर लेती है। अगर पीले बैकग्राउंड में है तो पीला लगता है, नीला है तो नीला। उसी प्रकार से हम जिस संघ में जाते हैं उस संघ का रंग जो है वो हमें लग जाता है। इसलिए हिंदी में कहावत क्या है, जैसा संग वैसा रंग। तो अब भगवान नाम का संकीर्तन 63वां, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये ऊपर लगाएंगे हम। तो कोई पढ़ेंगे? श्रीमद् भागवत में उनको जरा बोलेंगे जोर से बात न करें, बाहर कौन पता नहीं कौन है। अच्छा, तो ये भी एक महत्वपूर्ण श्लोक है श्रीमद् भागवत का। एतन्निर्विद्यमानानां इच्छतामकुतो भयम् योगिनां नृपनिर्णीतम् हरे नामानुकीर्तनम्। एतन्निर्विद्यमानानां इच्छताम अकुतो भयम् योगिनां नृपनिर्णीतम् हरे नामानुकीर्तनम्। बोलिएगा। एतन्निर्विद्यमानानां इच्छतामकुतो भयम् योगिनां नृपनिर्णीतम् हरे नामानुकीर्तनम्। सुखदेव महाराज परीक्षित को बता रहे हैं, कई प्रकार के लोग होते हैं। एक है निर्विद्यमानानां, जिनकी कोई भौतिक इच्छाएं नहीं होती हैं, या इच्छताम, दूसरे वर्ग हैं लोगों के, जिनकी बहुत सारी कामनाएं होती हैं, भौतिक कामनाएं होती हैं। और तीसरे हैं योगी नाम, जो आत्माराम हैं, मुक्त अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं। तो ऐसे तीन प्रकार के लोगों का वर्णन सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। कौन से हैं ये तीन प्रकार? नाम क्या है ना, शब्द क्या है यहां पर? निर्विद्यमाना नाम, निर्विद्य, निर्विद्यमाना घ नहीं है वो द्य है, निर्विद्यमानानाम, उनका जिनका कोई जिनकी कोई आसक्ति नहीं है इस भौतिक जगत से, तो विशेष करके भगवान के भक्त हैं। और फिर इच्छताम, जिनके मन में बहुत सारी भौतिक कामनाएं हैं। और तीसरा योगी नाम, अर्थात जो मुक्त अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं। तो इनके बारे में बताया जा रहा है, अकुतो भयम्, वो किस चीज से मुक्त हो जाते हैं? भय से, संशय से, पूरी तरह से मुक्त हो जाते हैं। उनको जरा बताएंगे कि क्लास चल रहा है या वो वहां जाके बात करें फोन पे। निर्णीतम, निर्णीतम मतलब निश्चित है, निश्चय किया हुआ है। हरिर नामानुकीर्तनम, हरि के नाम के कीर्तन से। नामानु अनु, अनुकीर्तनम। अब अनु शब्द का अर्थ बताइए, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, अनुशीलनम। तो अनु, यह अनु का शब्द का अर्थ बताइए। नहीं, अनु का मतलब आचार्य नहीं, आचार्यों के पद चिन्हों में चलना, पीछे पीछे चलना, जैसे आचार्य ने कीर्तन किया है वैसे हम भी करें, ठीक है। ये एक अर्थ हुआ। दूसरा अर्थ क्या है अनु का? कीर्तन करते रहना। तो अनु का और एक मतलब है किसी चीज को जारी रखना, सदैव करते रहना। और अनु का और एक अर्थ है भक्ति भाव से करना। तो तीनों जो अर्थ है उनसे दृष्टि से देखा जाए तो ये सही है। हरे नामानुकीर्तनम, हरि के नाम का कीर्तन ऐसे करना चाहिए कि जैसे महान आचार्यों ने किया है, उनके पद चिन्हों में चल के करना चाहिए। अपने मन गणित ढंग से कीर्तन की पद्धति का आविष्कार नहीं करने का प्रयास करना चाहिए। दूसरी बात कि हमें बड़े भक्ति भाव से करना चाहिए। और तीसरी बात कि निरंतर करना चाहिए। और अगर इस प्रकार से स्वाभाविक रूप से हमारा आकर्षण हो जाता है भगवान के नाम कीर्तन के प्रति, तो हम सबसे ऊंची सिद्धि को प्राप्त कर लगते हैं। तो आगे पढ़िएगा क्या लिखते हैं प्रभुपाद जी। अब यहां पे इन शब्दों का अर्थ भी प्रभुपाद जी एक तरह से बता रहे हैं कि ये लोग जो भक्त नहीं हैं उनके बारे में भी प्रभुपाद जी कह रहे हैं। तो योगी जन, योग सिद्धि के प्राप्ति की अभिलाषा रखते हैं, वो है योगी नाम। और दूसरे इच्छताम जो हैं, वो अपने कर्मों के फल की इच्छा रखने वाले हैं। और परम पुरुष से तादात्म्य की इच्छा रखने वाले ज्ञानी, वो है निर्विद्यमानानाम। ऐसे भी एक शब्द अर्थ किया जा सकता है। जो भी हो, चाहे वो भक्त हो, चाहे ज्ञानी हो, योगी हो, कर्मी हो, हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में, अपने कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए भगवान का नाम लाभदायक है। और भगवान का नाम लेने से व्यक्ति समसिद्धि को प्राप्त कर सकता है। और यह महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अन्य योग पथ को स्वीकारने वाले साधक हैं, वो भी अपने अपने पथ में समसिद्धि की प्राप्ति के लिए हरि नाम का प्रयोग कर सकते हैं। हरि नाम लेंगे तो वो अपने जगह में सिद्ध हो जाएंगे। तो कोई अगर कर्मयोगी है तो उसे कर्मयोग के मार्ग में सफलता चाहिए तो हरि नाम के सहारे वो सफलता को प्राप्त कर सकता है। उसी प्रकार से ज्ञान योगी, अष्टांग योगी आदि।
ऑफेंस में हुआ किसी स्वार्थ के लिए लिया
नहीं, ऐसे नहीं कि वो इस दृष्टि से कर रहे हैं, वो उनको ज्ञान नहीं है, उनको सही सही जानकारी नहीं है कि हरि नाम किस लिए लेना चाहिए। वो अपने पथ में, वो अपने अपना एक साधन समझते हैं हरि नाम को। हाँ, अपराध है, इसलिए उनको भक्ति नहीं मिलेगी। हरि नाम के प्रति अपराध करेंगे तो अपराध नहीं मिलेगा हमें, हमें शुद्ध प्रेम नहीं मिलेगा। आगे चल के हम देखेंगे कि ये भी एक पारसमणि जैसे है भगवान का नाम, और इस नाम से, इस नाम के माध्यम से हमारी सारी इच्छाओं को हम पूर्ण कर सकते हैं, चाहे वो भौतिक हो, भोग की कामना हो, मोक्ष की कामना हो, भक्ति की कामना हो, हर प्रकार की इच्छा जो है पूर्ण हो सकती है भगवान नाम के द्वारा। पर वो जो अपराध रहित और शुद्ध नाम लेता है, उसे कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वो अकेला ही होता है जो अपराधहीन, अपराध रहित नाम लेता है। तो जो अपराध नहीं करता उसे कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा, वो तो अकेला भक्ति ही होता है। तो अन्यों को अपने अपने इच्छाओं के अनुसार अपने वांछित फल जो है वो मिल जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि भक्ति जो हरि नाम का कीर्तन है वो साधन है और साध्य भी। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, जरा इसको आप याद रखिएगा। भक्ति के जो अंग हैं, विविध अंग, और विशेष करके भगवान का नामोच्चारण, ये साधन है और साध्य भी। इसका क्या मतलब है बताइए? और फिर साध्य को प्राप्त कर लेते हैं, कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद निरंतर चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि साधन का सहारा लेकर हम साध्य को प्राप्त कर लें और साध्य को प्राप्त करने के बाद साधन को त्याग दें। जैसे हम गाड़ी में बैठते हैं, एक गाड़ी से यहां से जाके वहां दूसरी जगह जाते हैं, जब अपने गंतव्य पर पहुंच जाते हैं तो गाड़ी से उतर जाते हैं, गाड़ी को त्याग देते हैं। लेकिन हरिनाम के साथ ऐसा नहीं है। हरिनाम साधन और साधी दोनों है। इसका मतलब है कि साधक के अवस्था में और सिद्ध अवस्था में, दोनों में हरिनाम लिया जाता है। अंतर केवल इतना है कि एक अशुद्ध नाम है, दूसरा शुद्ध नाम है, बस इतना ही अंतर है। अब आपको जो साधक के स्तर में होता है, अशुद्ध मतलब जो अपराध युक्त है नाम, और आप तो जानते ही हैं कि इतने सारे पथ हैं आध्यात्मिक जीवन में, तरह तरह की योग पद्धतियां हैं, तो उनमें से जैसे कर्म योग है, ज्ञान योग है, अष्टांग योग है, तरह तरह के योग पद्धतियां हैं, तो इनमें से सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? भक्ति योग। अब भक्ति योग में कितने सारे अंग हैं, इन तीन अंगों में सर्वश्रेष्ठ कौन से हैं? श्रवण कीर्तन स्मरण। तस्मान भारत सर्वात्मा, ये श्लोक याद है आपको, हम सुने हैं, वो आपको कंठस्थ करने के लिए निवेदन किया था। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छताभयम्। इसका क्या मतलब है? तस्मात् अतः भारत, हे भरतवंशी, सर्वात्मा कृष्ण, कृष्ण सर्व के आत्मा है, से सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। तो जो सर्वात्मा भगवान कृष्ण हरि ईश्वर के बारे में श्रोतव्य सुनते हैं, कीर्तितव्य बोलते हैं, फिर स्मर्तव्य स्मरण करते हैं, च इच्छता अभयम्, जो भी अभयता को चाहता है, निर्भयता, निर्भय होना चाहता है, विशेष करके मृत्यु के डर से, तो उसे भगवान श्री कृष्ण के बारे में बोलना चाहिए, सुनना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। तो इससे हम समझ सकते हैं कि भक्ति योग के अन्य विभिन्न अंगों में से ये तीन, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो इन तीन अंगों में से भी कीर्तनम ये श्रेष्ठ माना जाता है। ये कीर्तनम ये सारे भक्ति के अंगों का राजा है, और कीर्तन ये भी कई प्रकार के होते हैं। बताइए, याद कीजिए, आपके नोट्स देखिएगा। भगवान के बारे में गुणगान करना तीन प्रकार के, कौन से थे? भगवान के कौन से, किस किस विषय के बारे में हम कीर्तन कर सकते हैं? भगवान का नाम कीर्तन, गुण कीर्तन, लीला कीर्तन। तो इन तीनों में से श्रेष्ठ कौन सा है? नाम संकीर्तन। तो अभी आपको सारी श्रृंखला भी याद आ गई ना, सारे आध्यात्मिक पद्धतियों में से, योग पद्धतियों में से भक्ति सर्वश्रेष्ठ। भक्ति में से तीन महत्वपूर्ण अंग, अनेक अंगों में से तीन सबसे श्रेष्ठ कौन से? श्रवण, कीर्तन, स्मरण। इन तीन अंगों में से कौन सा श्रेष्ठ? कीर्तन श्रेष्ठ। कीर्तन में से नाम कीर्तन श्रेष्ठ है। ऐसा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर समझाते हैं। इसीलिए ये परिपूर्ण पद्धति है हर प्रकार की सिद्धि प्राप्त करने के लिए। और हरि नाम हरेक व्यक्ति के हरेक इच्छा को पूर्ण कर सकता है। हालांकि जो बुद्धिमान होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो हरि नाम से केवल भक्ति ही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। लेकिन जो भक्त नहीं है, वो भी अगर भगवान का नाम लेंगे तो उनकी इच्छाएं भी पूर्ण हो जाएंगी। ठीक है, तो अभी इस श्लोक से हम क्या सीख सकते हैं बताइएगा। इस श्लोक का तात्पर्य संक्षेप में बताइए अभी। अच्छा, मतलब बताइए श्लोक का। निर्विद्यमानानाम इच्छताम और योगिनाम, इनके मतलब बताइए। इच्छताम,
तो अगर वैसा व्यक्ति भगवान के नाम का कीर्तन करता है तो,
और दो कौन? निर्विद्यमानानाम अर्थात जिसकी कोई भौतिक इच्छा नहीं है, कोई भौतिक इच्छा नहीं है, अर्थात हो सकता है वो मुक्ति की कामना करे। और अंतिम योगी नाम, योगी नाम मतलब जो पहले से ही मुक्त हैं। ठीक है, तो इन तीनों को अपनी अपनी इच्छाएं प्राप्त होती हैं। बल्कि हर एक व्यक्ति को अपने अपने पथ में सिद्धि प्राप्त करनी है तो उसे नाम का आश्रय आवश्यक है। नाम का आश्रय लेने से हर एक व्यक्ति समसिद्धि को प्राप्त कर सकता है अपने अपने पथ में। हम तो जानते हैं कि भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, परंतु अन्य हैं जो भक्ति मार्ग को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, उनको भी हरि नाम का आश्रय लेना चाहिए। ये एक बात। दूसरी बात क्या है साधन और साध्य के बारे में? हरि नाम क्या है? साधन और साध्य दोनों है। क्यों ऐसे?
इसी के द्वारा साध्य प्राप्त होता है।
हरि नाम कभी बंद नहीं होता। साधक अवस्था में चलता है, सिद्ध अवस्था में भी चलता है। ठीक है, अब अगला श्लोक, ये आदि पुराण का श्लोक है, ऊपर जरा लगाएंगे आप। इसमें और बताया जा रहा है कि भगवान के नाम कीर्तन करने से दो फायदे हो जाते हैं। ये आदि पुराण से स्वयं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। कृपया पढ़िएगा आदि पुराण में क्या कहते हैं श्री कृष्ण। तो आइए, गीत्वाच मम नामानि विचरेन् मम सन्निधौ इति ब्रवीमि ते सत्यम् क्रीतोऽहं तस्य चार्जुन। अच्छा, अभी आप मतलब बताइए। हाँ जी बताइए।
जो व्यक्ति मेरे नाम का
गीतवा मतलब गान करता है, गीतवा जो गान करता है, च मम मेरे नामानी बहुवचन मेरे नामों का, तो फिर क्या होता है? सत्य कहता हूँ मतलब कौन सा है? ब्रवीमि मतलब
बोलना,
तो मैं सत्य बोल रहा हूँ कि क्या होता है ऐसे व्यक्ति को?
वह व्यक्ति मेरे विचारों में जो रहता है, मेरे साथ में रहता है, कीर्तन के द्वारा मेरे सानिध्य में रहता है, सदैव मेरे संग में रहता है, और ऐसे व्यक्ति का मैं उसके हाथों में बिक जाता हूँ।
विचरेन का मतलब विचार नहीं है, जो पास में आता है उसको वो स्थान मिल जाता है। विचरण, विचरण से आता है। तो जो व्यक्ति मेरे अनेक नामों का गान करते रहता है उसे अवश्य ही मेरा सानिध्य प्राप्त हो जाता है। और दूसरी बात क्या है? क्रीतः, क्रीतो अहम् तस्य च अर्जुन, मैं उसका क्रीत दास बन जाता हूं, मैं बिक जाता हूं। तो भगवान का नाम लेने से ये दो लाभ हो जाते हैं। तो पहला लाभ क्या है? भगवान का सानिध्य प्राप्त करना, और दूसरा
भगवान हमारे इच्छा के अनुसार चलते हैं।
क्यों आपने यहाँ के शब्द इस्तेमाल नहीं किए? क्रीत दास कहना आपको ठीक नहीं लगा, इसलिए ये दूसरा जो पॉइंट है हम इसे लाभ तो नहीं कह सकते, क्योंकि भक्त तो कभी नहीं चाहता कि भगवान उनके कृतदास बने। भक्त तो चाहते हैं कि वो भगवान के कृत हमेशा दास रहें, लेकिन भगवान पसंद करते हैं अपने भक्तों के कृतदास बनने के लिए। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि हरि नाम लेने के दो परिणाम होते हैं। परिणाम, पहला परिणाम है भगवान का सानिध्य प्राप्त होना, और दूसरा परिणाम ये कि भक्त, ये भगवान जो है वो भक्त की संपत्ति बन जाते हैं, है ना? बहुत ही सुंदर बात। सानिध्य प्राप्त होता है, निकटता प्राप्त होती है। अच्छा, आगे पढ़िएगा, पद्म पुराण में क्या कहा गया है? कि वो भगवान अपने आप को बेच देते हैं, कि संपत्ति बन जाते हैं भक्त के, क्रीत दास बन जाते हैं, खरीदे जाते हैं भगवान भक्त के द्वारा हरि नाम का उच्चारण करने मात्र से। क्रीतो हम तस्य, फिर अगले पद्म पुराण में ये बताया है कि कौन भगवान के नाम को निरंतर ले सकता है। पढ़िएगा, नहीं बस बस ठीक। ये न जन्म सहस्राणी वासुदेवो निषेवितः तन्मुखे हरिनामानि सदा तिष्ठन्ति भारत। अभी मतलब बताइए, अनुवाद भी पढ़ लिया हमने। हाँ निषेवित मतलब सेवा की है, पूजा की है, ठीक है। बहुत अच्छा, तिष्ठन्ति मतलब रहना। तो जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने सहस्र हजार जन्मों तक वासुदेव या श्री कृष्ण की सेवा की है, ऐसे व्यक्ति के मुख में सदैव हरिनाम का उच्चारण होता है। तो दूसरे शब्दों में, अगर इस जन्म में कोई हरिनाम का सदैव उच्चारण करता है तो हमें क्या समझना चाहिए, उसने पूर्व कितने जन्मों में, हजार जन्मों में भगवान की सेवा की है, इसलिए इस जन्म में वो भगवान का निरंतर जाप या कीर्तन कर पा रहा है। तो अगर कोई चांडाल परिवार में भी जन्म लिया हुआ हो, अगर वो भगवान का नाम ले रहा हो, तो हमें समझना चाहिए कि पहले से हजार वर्षों जन्मों से उसने भगवान की सेवा की होगी, इसलिए अब वो इस अवस्था को प्राप्त कर चुका है। अहो बतस्व पचोत गरियान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम तेपुस तपस्ते जुहुबुहु सस्नुरार्या ब्रह्मानुचुर नाम गृणंति येते। कौन कहते हैं ये श्लोक, चर्चा कर चुके हैं हम इस श्लोक। देवहूति, माता देवहूति कहती है किनसे, कपिल देव से। और इसका मतलब क्या है, अहो बट श्वपच तो गरियान, श्वपच कौन होता है, चंडा। अभी आपको हिंट मिल गया, अभी आगे बताइए। यज जिह्वाग्रे, जिह्वा के अग्रे अग्रभाग से वर्तते नाम तुभ्यम, बताइए। अगर कोई श्वपच है, उसके जिह्वाग्र से, उसके जिह्वा से सतत आपका नाम निकलता है, जिह्वाग्र वर्तते नाम तुभ्यम, तुभ्यम मतलब आपका। फिर तेपुह तपह, नहीं वो दूसरा, यन नाम धेय, वो अलग है श्लोक, माता देवभूति का ही श्लोक है। तेपुह तपह, हमें समझ लेना चाहिए कि उसने जितनी भी तपस्या करनी है वो कर ली है। ब्रह्मानुचुर, उसने सारे वेदों का पाठ कर लिया है। सस्नुर जुहुबुहु, उसने सारे पवित्र स्थानों में स्नान कर लिया है। आर्य, सारे आर्य सभ्य समाज के रीति रिवाजों को स्वीकार कर लिया है। अर्थात तो उसने जो भी कुछ सभ्य समाज में किया जाता है, एक साधक को करना चाहिए, सब कर लिया है, इसलिए तो वो भगवान का नाम ले रहा है। तो हालांकि वो चंडाल परिवार में जन्म लिया हुआ है, फिर भी हमारे लिए वो सारे विश्व के लिए पूजनीय है। गरियान, गरियान मतलब पूजनीय। तो इसी बात की पुष्टि यहां पे हो रही है जब कहा गया है कि हजार जन्म वासुदेव कृष्ण की सेवा करने के बाद ही निरंतर भगवान का नाम किसी के मुख से निकल सकता है। ठीक है, केवल शुद्ध अवस्था के बाद ही तो निरंतर भगवान का नाम निकलेगा। जो व्यक्ति पूरी तरह से शुद्ध नहीं है तो उसके मुख से कैसे निकलेगा निरंतर भगवान का नाम? क्योंकि यहाँ क्या लिखा है, सदा सदा तिष्ठन्ति भारत, सदा जिसके मुख में, तन मुखे हरि नामानि सदा तिष्ठन्ति, है ना।
अर्जुन और भारत ये भगवत गीता के का जो उपदेश भगवान जी ने अर्जुन को दिया, तो पद्म पुराण आदि पुराण
नहीं, भगवत गीता में नहीं है ये, तो पद्म पुराण से है श्लोक।
तो ये पद्म पुराण में भी अर्जुन को रेफरेंस?
हाँ, क्यों नहीं, ऐसे नहीं कि केवल भगवत गीता में ही अर्जुन का उल्लेख आता है, अनेक शास्त्र में। हाँ बिल्कुल, आदि पुराण में भी है, वो भी आदि पुराण का श्लोक भी तो कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यहाँ पद्म पुराण में भी कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कृष्ण अर्जुन का संवाद केवल भगवद गीता में है, अन्य शास्त्र में भी है। भगवद गीता का संदेश जो संवाद है वो सबसे लंबा है कृष्ण अर्जुन का। अगर निम्न कुल में हुआ किसी का जन्म ऐसे, तो यही दिखाने के लिए कि भक्ति कुल के ऊपर जन्म के ऊपर निर्भर नहीं है, ताकि सारे समाज को पता चले, विश्व को पता चले कि भक्ति का इन चीजों से बिल्कुल संबंध नहीं है, कि भगवान का भक्त किसी भी समाज के क्षेत्र में श्रेणी में हो सकता है। और हालांकि ये भक्त भगवान की सेवा कर रहे हैं तो भगवान उनको फिर भी जन्म मृत्यु के चक्कर में रखते हैं। क्यों? तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि और आतुरता से वो उनका नाम लेने सीखे, और जब पूरी तरह से शत प्रतिशत वो शुद्ध हो जाएगा तब भगवान उस भक्त को वापस लेकर जाएंगे, उसके पहले नहीं। तो यहां केवल सेवा की बात की गई है कि जो हजार वर्षों तक भगवान की सेवा करता है। ठीक है, और पद्म पुराण का और एक श्लोक है तो लगाएंगे, जिससे ये पता चलता है कि भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। आपने ये श्लोक अवश्य सुना होगा पहले, नाम चिंतामणि कृष्णस्ते, आपने सुना है ना श्लोक, नाम चिंतामणि
कृष्णस्ते
चैतन्य रस विग्रहः पूर्णः शुद्धो नित्यमुक्तो अभिन्नत्वान् नाम नामिनोः। अब बताइए इसका मतलब, धीरे धीरे से आपको प्रैक्टिस करते रहना है ऐसे, एक बस अंदाज मिलना है अपने को यहाँ श्लोक का मतलब क्या है। चिंतामणि के समान है, तो क्या होता है चिंतामणि, क्या का गुण क्या होता है? चिंतामणि धाम है ना, चिंतामणि धाम क्या है, भगवान का धाम है ना, तो चिंतामणि धाम में क्या होता है? चिंतामणि प्रकर सदमशु कल्प वृक्ष, सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं चिंतामणि के द्वारा। इसलिए वृंदावन या वैकुंठ जगत को चिंतामणि धाम कहा गया है। वो है चिंतामणि, और ये भौतिक जगत क्या है? चिंतामणि, चिंता अबाउट मनी, है ना? वो चिंतामणि धाम, और ये है चिंता मनी, मनी 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 इज हनी। चिंता अबाउट मनी धाम, ये है भौतिक जगत। नाम चिंतामणि है, पहले भी इस बात को हम सुन चुके हैं कि इससे सारी इच्छाओं की, समस्त इच्छाओं की पूर्णता हो सकती है। और आगे फिर मतलब बताते जाइए। विग्रह है, परंतु ये चैतन्य चेतना से पूर्ण है। ऐसा नहीं कि भगवान का नाम कोई भौतिक चीज है, ये चेतन है, ये आध्यात्मिक है, चेतन है, और साथ साथ रस से पूर्ण है। और कृष्ण ही है, कृष्ण रूप है, कृष्ण रूपी नाम चेतना और रस से भरा हुआ है, और इसका रूप है। वही सच्चिदानंद तत्व दो रूपों में प्रकट होते हैं, एक है रूप, एक है नाम। रूप मतलब भगवान का रूप, जो यहां हम देख रहे हैं सुंदर रूप है भगवान का, यह है सच्चिदानंद स्वरूप। और एक सच्चिदानंद स्वरूप है नाम, नाम का भी रूप है विग्रह है। और इसकी पहचान क्या है? पूर्ण, पूर्ण है ये नाम, शुद्ध, नित्य मुक्त है, नित्य मुक्त है, आध्यात्मिक है, भौतिक जगत से परे है, साथ साथ अभिन्नत्वान नाम नामिनो हो। इसका मतलब बताइए। नाम और नामी, जैसे देह और देही, देह तो शरीर है और देही आत्मा है, जो शरीर में है, जो देह में है, या जिसका है ये, जिसकी संपत्ति है ये देह, वो है आत्मा। तो देह और देही, उसी प्रकार से नाम और नामी। तो भगवान का नाम एक और दूसरे वो व्यक्ति जिनका ये नाम है नामी। तो नाम और नामी में कोई अंतर नहीं। अभिन्नत्वाम, अभिन्न है दोनों। तो प्रभुपाद जी अक्सर कहा करते थे कि जब कोई भगवान के नाम का उच्चारण करता है तो भगवान साक्षात उसके जिह्वा पर नृत्य करते हैं। ठीक है, तो पढ़िएगा।
हरे कृष्ण मन का कीर्तन उसी व्यक्ति के ओठों पर रहता है।
उसके बाद
कलमश।
तो देखिए अभी अनुवाद कैसे, अभी समझ में आ रहा है ना अनुवाद, शब्दों को देखकर आप समझ पा रहे हैं ना। अच्छा आगे पढ़िएगा।
दूसरे शब्दों में भक्ति इंद्रियां हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन समुचित ढंग से नहीं कर पाती, किंतु इस कीर्तन विधि को अपनाने से मनुष्य को आत्मशुद्धि का वास्तविक असर होता है, जिससे वह शीघ्र ही निरपराध भाव से कीर्तन कर सके।
तो भगवान का नाम तो आध्यात्मिक है, हमारी इंद्रियां तो भौतिक हैं, तो अगर हम भौतिक भावना से अपराध युक्त नाम लेंगे तो कभी भी हम शुद्ध पूरी तरह से नहीं हो पाएंगे। तो भौतिक इंद्रियां सही तरह से शुद्ध नाम का उच्चारण नहीं कर सकती हैं, इसलिए हमें चाहिए कि हम अपराधहीन अपराध रहित नाम जप करें। और जब हमारा हृदय अपराध युक्त नाम से अपराध रहित नाम से भर जाएगा तब हम नाम तत्व कृष्ण तत्व आदि को समझ पाएंगे। इस अवस्था में बद्ध अवस्था में हम अपराध युक्त नाम लेते हैं, शुद्ध अवस्था में अपराध रहित नाम लेते हैं। तो ये श्लोक हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद् ग्राह्यमिन्द्रियैः सेवोन्मुखे हि जिह्वादो स्वयमेव स्फुरत्यदः। तो श्री कृष्ण के नाम गुण रूप लीला धाम आदि को समझना है तो ये ग्राह्य इंद्रियें, ये जो स्थूल इंद्रियां हैं भौतिक इंद्रियां हैं, इनसे नहीं होगा। तो क्या करना चाहिए हमें अगर समझना है तो इन चीजों को, सेवा उन्मुखे, सेवा करना चाहिए भगवान की। जब वो सेवा भाव विकसित होगा हमारे हृदय में और जो कि हमारे जिह्वा से शुरू होता है कीर्तन करके जप करके आदि, तो फिर स्वयं एव स्फुरत्यदः, फिर इस साक्षात्कार हमारे हृदय में हो जाएगा, ये स्फूर्ति इस बात की हो जाएगी। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा है चेतो दर्पण मार्जनम, कि हरि नाम लेकर हमारे चित्त का मार्जन हम साफ कर सकते हैं। तो पढ़िएगा चैतन्य महाप्रभु। इसका मतलब ये है कि जब तक हमारे अंदर सेवा भाव नहीं आएगा तब तक हम नाम रुचि हमारे मन में उत्पन्न नहीं होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, इसलिए हमें चाहिए कि हम भक्तों के संग में आकर हमेशा कुछ न कुछ सेवा करें, अपने आप को हम सेवा के लिए अर्पित कर दें, छोटी सेवा बड़ी सेवा किसी भी प्रकार की सेवा, सेवा भाव होना बहुत ही आवश्यक है। सेवा भाव जब रहेगा तब धीरे धीरे से हम भगवान का नाम जप कर पाएंगे, कीर्तन कर पाएंगे। सेवा भाव से अपराध रहित चित्त बन जाता है। और ऐसे अवस्था में हम भगवान के नाम गुण लीला आदि को समझ सकते हैं। तो चाहे व्यक्ति कितना भी बड़ा व्यक्ति हो समाज में, उसे चाहिए कि वो मंदिर में आए या भक्तों के संग में आए और साधारण से साधारण सेवाएं करने के लिए तैयार हो। और अगर उसके पास कोई ऐसी भी सेवा है जो बड़ी सेवा मानी जाती है, हालांकि भगवान के दृष्टिकोण से तो हर एक सेवा एक समान है, फिर भी अगर संसार के दृष्टि से भी ऐसी कोई सेवा लगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ऊंची है, फिर भी वो ऐसी सेवा बड़े नम्रता पूर्वक करे, उसकी भावना बहुत महत्वपूर्ण है। कोई अगर बहुत बड़ी सेवा कर रहा है, करोड़ों रुपए दान दे रहा है क्योंकि उसके पास बहुत पैसा है, तो उसे ये नहीं समझना चाहिए कि मेरी सेवा बहुत महत्वपूर्ण है और मैं बहुत बड़ा हूं, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। उसे इसी भाव से देना चाहिए कि ये मेरा धन नहीं है, ये कृष्ण का ही है। कृष्ण ने मेरे माध्यम से उन्हीं की सेवा के लिए ये धन की व्यवस्था की है, इसलिए ये मेरा श्रेय नहीं है, भगवान का है। और ये सारा धन मेरा ना होकर उनका है, इसलिए मैं ये धन उन्हीं की सेवा में इस्तेमाल करूंगा और मैं अपने आप को अन्यों से श्रेष्ठ नहीं समझूंगा मेरे धन के बल पर, इसलिए मैं सबके साथ नम्रता पूर्वक रहूंगा। तो ये रही उस भक्त की जिसके पास बहुत सारा धन है, जो बहुत बड़ा दान दे सकता है। तो उसी प्रकार से किसकी ज्यादा बुद्धि है, किसकी ज्यादा कीर्तन करने में क्षमता है, किसकी ज्यादा कोई और कोई चीज करने में कला है, जो भी हम कर रहे हो, हमें याद रखना चाहिए कि ये भाव सेवा का होना चाहिए। मैं सेवक हूं, मैं वैष्णवों के दासों का दास हूं। ये दुनिया में घमंड बहुत आसानी से चले आता है और भक्तों का हृदय भी नहीं छोड़ता इतनी आसानी से, इसलिए भक्तों को बहुत सावधान रहना चाहिए। सेवा भाव तब तक जागृत नहीं हो सकता जब तक कि हम वैष्णवों के सेवक न बने। वैष्णव की सेवा करने से या वैष्णव के सेवक बनने से, उनके आदेशानुसार कार्य या सेवा करने से सारा आध्यात्मिक जगत हमारे लिए खुल जाएगा। ठीक है, अभी 64वां नियम, अंतिम नियम, मथुरावास पढ़िएगा। इसके बाद कौन सा श्लोक है?
उसमें यह कहा गया है कि विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा करने का अर्थ है भव बंधन से छुटकारा प्राप्त करना, किंतु यह छुटकारा सर्वोच्च सिद्धावस्था नहीं है। इस मुक्तावस्था को प्राप्त कर लेने के बाद भगवान की शक्ति में लगना होता है। ब्रह्मभूत मोक्ष अवस्था प्राप्त करने के बाद मनुष्य भक्ति में और अधिक अग्रसर हो सकता है। इस तरह भगवान की दिव्य प्रेममयी भक्ति की यह पानी की यह प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य है। जो व्यक्ति मथुरा मंडल में कुछ क्षण भी निवास करता है, उसे यह सरलता से प्राप्त हो जाती है।
ये मथुरा महात्म्य है, मथुरा का महात्म्य। वैसे अन्य पुण्य तीर्थेषु, अन्य जो पुण्य तीर्थ हैं, मुक्ति ही महाफला, मुक्ति जो है वो सबसे महान फल है जो वहां प्राप्त हो सकता है। अधिक से अधिक अन्य तीर्थ स्थानों से हमें मुक्ति प्राप्त हो सकती है, जैसे वाराणसी है, हरिद्वार है आदि। परंतु मुक्तैहि प्रार्थ्या हरेर भक्ति मथुरा लब्ध्या, कि जो व्यक्ति मुक्त है पहले से वो प्रार्थना करता है कि मुझे हरि भक्ति चाहिए, और वो उसे मथुरा मंडल में रह के मात्र प्राप्त हो सकता है। एक दिन के लिए भी अगर कोई व्यक्ति यहां रहे, एक कई क्षणों के लिए भी कोई यहां पर रहे, तो मथुरा मंडल में उसे कृष्ण भक्ति प्राप्त हो सकती है। तो बताइए, मथुरा मंडल अर्थात ब्रजभूमि और विशेष करके गोलोक वृंदावन और अन्य तीर्थ स्थानों में अंतर क्या है, बताइए। तो मथुरा मंडल की विशेषता ये है कि मथुरा मंडल हमें भक्ति प्रदान कर सकती है, जो अन्य पुण्य तीर्थ हैं वो केवल मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। मुक्ति या भक्ति कौन सा श्रेष्ठ है? भक्ति। तो जो भक्त है उसको फिर मुक्ति नहीं मिलता, पहले से मुक्त है, परंतु फिर इस भौतिक शरीर से मुक्ति मिलती है उसे? शरीर में रहते हुए भी शरीर का संबंध उसका नहीं रहता, परंतु जब शरीर छोड़ता है मृत्यु के समय, तो फिर वो भगवान के धाम में जाएगा? नहीं जाएगा। परंतु अगर भगवान चाहे कि वो यहां पर रहें, तो वो तैयार रहते हैं। तो अन्य स्थानों में मुक्ति और मथुरा मंडल में भक्ति। आगे पढ़िएगा, इसके आगे
कहा गया है, ऐसा कौन होगा जो मथुरा भूमि की पूजा करने को तैयार नहीं होगा? मथुरा समस्त कर्म और मोक्षों का इच्छाओं एवं आकांक्षाओं से उद्धार करने वाली है। मथुरा उन भक्तों की इच्छाओं को अवश्य पूरा करेगी जो केवल भगवत भक्ति में ही तल्लीन रहने के आदी हैं। वैदिक साहित्य में यह भी कहा गया है, कैसी विचित्र बात है कि मथुरा में एक दिन भी वास करने से मनुष्य को भगवान के प्रति दिव्य प्रेम भाव उत्पन्न हो जाता है। ये मथुरा भूमि अवश्य ही वैकुंठ धाम से अधिक है।
तो जैसे भगवान दिव्य हैं, उनका नाम दिव्य है, उनका धाम भी दिव्य है। भगवान के रूप में, उनके दिव्य शरीर में, उनके धाम में, उनकी लीला में, उनके गुण में, उनके वर्णनों में, कथाओं में कोई अंतर नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो जिस प्रकार से भगवान और भगवान के जो अनंत नाम हैं, वो समस्त इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं, उसी प्रकार से भगवान का धाम भी इसी प्रकार से पूर्णतया समर्थ है, और विशेष करके मथुरा मंडल या ब्रजभूमि, यहां का हर एक रज का कण जो है ये चिंतामणि है। यहां सब कुछ, हर चीज का व्यक्तित्व होता है ब्रज में, आध्यात्मिक जगत में। एक बार एक भक्त ने प्रभुपाद जी से पूछा कि प्रभुपाद, हमने सुना है कि ब्रज में रज का भी व्यक्तित्व होता है, हम ये कैसे समझ सकते हैं? व्यक्तित्व ठीक है, एक पशु का है, पेड़ का है, ऐसा कुछ, परंतु रज का व्यक्तित्व ये कैसे हम समझ सकते हैं? तो प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया कि आप किसी दूसरे जगह में जाइए, आप वहां की मिट्टी को उठाइए और कोई प्रार्थना कीजिए, कोई इच्छा है, कुछ चाहिए उस मिट्टी से, आपको मिलेगा। आप अलीबाग से है ना? अच्छा, अलीबाग की मिट्टी उठाइए कि आप मुझे शुद्ध भक्त बनाइए। अलीबाग की मिट्टी बनाएगी? नहीं। लेकिन यहां पे वृंदावन में आप मिट्टी को उठाइए और प्रार्थना कीजिए, ये मिट्टी ये रज आपकी इच्छा को पूर्ण कर सकती है, ये क्षमता ये सामर्थ्य है। और क्योंकि ये रज आपकी सारी इच्छाओं को पूर्ण कर सकता है, इसलिए हमें जानना चाहिए कि इसका व्यक्तित्व है। आध्यात्मिक जगत में हर चीज का व्यक्तित्व है, क्योंकि व्यक्तित्व किस चीज का होता है, जो चेतन है ना। मृत चीज का तो कोई व्यक्तित्व नहीं हो सकता। भगवान, यह भगवान के धाम में तो सब कुछ चेतन है, इसलिए हर चीज का व्यक्तित्व है। परंतु भौतिक जगत में आत्मा और परमात्मा के सिवाय और किसी चीज का क्या व्यक्तित्व नहीं है, क्योंकि सब अचेतन है। तो उसी प्रकार से मथुरा मंडल और मथुरा मंडल का हर एक कण रज भी, हर एक लता पत्ता फूल रज हमारे समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने में समर्थ हैं। और किन के, केवल भक्तों के नहीं, जो भोगवादी यहां आएंगे उनकी भोग करने की कामना भी खूब पूर्ण करेंगे। जो ज्ञानी हैं उनको निराकार की प्राप्ति करने की जो इच्छा है वो भी पूर्ण होगी। और जो भक्त हैं जो भगवान की सेवा चाहते हैं उनकी भी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो इसलिए पद्म पुराण की बात आगे बढ़ाते हुए प्रभुपाद जी बतला रहे हैं कि जो एक दिवस भी मथुरा मंडल में, ब्रज मंडल में, गोलोक वृंदावन में रहेगा तो निश्चित ही उसे भगवान के प्रति प्रेममयी भावना जो है वो उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए ये मथुरा मंडल जो है वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है। हालांकि वैकुंठ भी परिपूर्ण है, लेकिन तरतर ज्ञान, तरतम ज्ञान क्या है पता है ना? तरतम पूर्ण, तर पूर्णतम, पूर्ण पूर्णतम, पूर्णतर पूर्णतम, परफेक्ट मोर परफेक्ट मोस्ट परफेक्ट। तो उसी प्रकार से वैकुंठ तो है ही परिपूर्ण, परंतु वृंदावन सबसे अधिक पूर्ण है, पूर्णतम। और द्वारका पूर्णतर है, बीच में पूर्ण पूर्णतर पूर्णतम। मायापुर का आप बताइए, एक ही है वृंदावन मायापुर में, कोई भिन्नता नहीं है। और इनको भिन्न समझना ये धाम अपराध है। जैसे नाम के प्रति 10 अपराध हैं, उसी प्रकार से धाम के प्रति भी 10 अपराध हैं। उनमें से ये एक अपराध है कि मायापुर और नवद्वीप को भिन्न समझना। वैकुंठ तीनों ही पूर्ण ही हैं, लेकिन पूर्णता के भी श्रेणियां होती हैं, ठीक है। इसको लगाएंगे आप ऊपर। तो अभी ये 64 भक्ति के अंग, 64 नियम भक्ति के, इसके बारे में चर्चा कर चुके श्रील रूप गोस्वामी। तो इसके बाद रूप गोस्वामी कहते हैं कि भक्ति के 5 प्रबल रूप हैं, या इन 64 अंगों में से ये 5 बहुत ही प्रबल हैं। तो इसको आप लिख लीजिएगा, फिर बाद में चर्चा करेंगे। ये नंबर कौन से हैं आप जानते हैं ना, आप नंबर लिखते जाइएगा। जैसे 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 मथुरा वास, ये 64वां नंबर है ना, आखिरी वाला है, तो इसके पीछे 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 आप लिखते जाइएगा। भगवान नाम का संकीर्तन chanting the holy name of the Lord. اور اس کے نیچے ہے 33, مطلب وہی چیز دو دو بار چرچا کر چکے ہیں روپ گوسوامی. اور ایسے کئی نیم ہیں جو دو سے ادھک بار بھی چرچا کر چکے ہیں روپ گوسوامی, کیول اسی سدھانت کو, اسی انگ کو جوڑ دینے کے لیے. اپرادھ رہت واس کرنے سے ادھک لابھ ہو جائے گا. ایک نہ ایک دن تو آئے گا ہی, ابھی اس مارگ میں وہ چل رہا ہے, کیول سمے کی بات ہے, کیول تھوڑے سمے کی بات ہے. ہم لوگوں کو عادت ہے نا, پانچ سال, او اتنے لمبا سمے, ہم تو پانچ سال سے ہیں, دس سال سے ہیں, پندرہ سال سے ہیں, ابھی تک نہیں ہوا. لیکن پندرہ سال کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے, ایک کھن بھی نہیں ہے. شاشوت کال کے درشٹی کون سے دیکھا جائے تو پانچ سال کیا ہے, دس سال, پانچ جنم کیا ہے, پچاس جنم کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو ہو گیا مطلب ہو گیا, پرائے ہو گیا, ابھی دو تین کھن کی بات ہے, چاہے وہ دو تین جنم لگے, تھوڑا سمے بس. تو اوپا جی کہا کرتے تھے, ابھی ابھی چیتنیہ مہاپربھو پرکٹ ہوئے, ابھی ابھی, کیول پانچ سو سال پہلے. یا کلیوگ یا ستیو کے درشٹیکون سے دیکھا جائے, اودھی کے درشٹی سے دیکھا جائے, تو بھگوان کرشن کیول پانچ ہزار ورش پورو آئے. کہنے کی بات, تلنا کس سے کر رہے ہیں آپ, یہ مہتوپورن ہے. لیکن یہاں کسی کو پوچھے اس کی آیو کتنی ہے, آیو دو سو ہے, دو سو, اچھا, لیکن بھگوان کرشن کا کیول پانچ سو, پانچ ہزار سال. تو اسی پرکار سے بس ہو گئے, سمجھ لیجیے ہو گئے. ہم لوگ سوچتے او پانچ جنم لگیں گے, او پانچ دس جنم لگیں گے, دو جنم لگیں گے, دس سال لگیں گے, لیکن یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. یوں ایسے کریے بس, سمجھ لیجیے دس جنم ہو گئے. ہم نے ایسے کتنے جنم بتائے ہیں, لاکھوں لاکھوں جنم بتائے ہیں. سمندر میں جب لہریں چلتی ہیں اور لہریں ٹکراتی ہیں تو کیا ہوتے ہیں, ببلز, بڑبڑے, کیا بولتے ہیں اس کو, بلبلے آتے ہیں اوپر, کتنے سمے کے لیے رہتے ہیں, ترنت ہی ختم ہو جاتے ہیں. ویسے ہمارا ایک جیون ہے, اوپر آیا ختم, اوپر آیا ختم, ایک جنم ختم, دوسرا جنم ختم. اور ہم سوچتے ہیں اس ایک جنم میں رہتے ہوئے کتنی ساری سمسیا میں ہم الجھ جاتے ہیں, یہ سمسیا, وہ سمسیا, یہ وہ, ہے نا, اتنے الجھ جاتے ہیں بس اس بلبل, کیا ہے ہمارے جیون, ختم. پھر نہیں, یہ ٹھیک ہے, یہ ایک اتسکتا جو ہے وہ اچھا ہے ایک درشٹی سے, پرنتو ساتھ ساتھ دھیرج بھی رکھنا چاہیے. روپ گوسوامی کیا کہتے ہیں, उत्साहन निश्चरात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात. तो सबसे पहली बात, उत्साह होना चाहिए, साथ साथ निश्चय भी होना चाहिए कि हम कृष्ण प्रेम को प्राप्त करेंगे ही, इस पथ को हम इस पथ पे चलेंगे तो कृष्ण प्रेम निश्चित ही मिलेगा, हमारा जीवन निश्चित ही सफल होगा. परंतु कितने समय में, समय लग सकता है, इसलिए धैर्यात, थोड़ा धीरज भी रखना. ऐसा नहीं कि बस अरे एक साल हो गया माला कर रहे हैं अभी तक हम शुद्ध भक्त हुए नहीं, ऐसा नहीं, धैर्य भी होना है. और धीरज रखते रखते क्या करना है, तत्त कर्म प्रवर्तनात्, हमारे जो नित्य नियम है, भक्ति के अंग है, इनका पालन तो बड़े शक्ति से करते रहना चाहिए. अच्छा, तो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते हुए चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कि जितने भी नियम हैं उनमें से पांच जो हैं सबसे श्रेष्ठ हैं, सबसे शक्तिशाली हैं. वो श्लोक किसी को याद है, साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण, फिर श्रीमूर्तिर श्रद्धाय सेवन, मथुरावास श्रीमूर्तिर श्रद्धाय सेवन, ये पांच चीजें, ये सबसे शक्तिशाली मानी जाती है। सकल साधन श्रेष्ठ ए पंच अंग, सर्व साधनों में से ये पांच जो है अंग सबसे शक्तिशाली माने जाते हैं। कृष्ण प्रेम जन्म ए पांचेर अल्प संग, इन पांच साधनाओं का अल्प संग करने मात्र से कृष्ण प्रेम का उदय हृदय में हो जाता है। हालांकि 64 हैं, लेकिन इन 64 अंगों में से ये पांच सर्वश्रेष्ठ हैं। तो ये है नया अध्याय, अध्याय 13, भक्ति के पांच प्रबल रूप। तो पढ़िएगा, श्रील रूप गोस्वामी ने, विशेष रूप गोस्वामी कहते हैं कि अगर किसी को इन पांच अंगों में श्रद्धा है या स्वल्प अपि संबंध है, थोड़ा सा संबंध भी अगर इन पांच अंगों से है, तो निश्चित ही उसे अनुभव होगा कि इन पांच अंगों का बहुत ही अचिंत्य आश्चर्यजनक शक्ति है, उस भक्त को बहुत परिवर्तित कर सकते हैं ये पांच। अगर कोई नौसुखिया भी क्यों न हो, बहुत शीघ्र ही वो भाव भक्ति के स्तर तक पहुंच सकता है। वैधि से लेकर रागानुग, रागानुग से लेकर भाव भक्ति की अवस्था तक प्राप्त कर सकता है सहज ही, परंतु इसके लिए महत्वपूर्ण यह है कि वो अपराध रहित हो। अगर अपराध करता रहेगा तो फिर उतना समय लगेगा, अपराध रहित व्यक्ति होगा तो शीघ्र ही भाव भक्ति के स्तर को प्राप्त कर लेगा। तो ये जो 64 नियमों का वर्णन या अंगों का वर्णन रूप गोस्वामी ने किया है, और 12वें अध्याय के अंत तक के 64 नियम अंगों का वर्णन समाप्त हो गया। अब जो अंतिम पांच अंग हैं उनको पुनः दोहरा रहे हैं इस 13वें अध्याय में श्री रूप गोस्वामी, क्योंकि ये इतने महत्वपूर्ण हैं, ये सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए अंतिम पांच अंगों का वर्णन प्रमाण के साथ पुनः यहां हमें पढ़ने को आएगा। और ये जो अंतिम पांच अंग हैं ये भी पहले से दोहराए हुए हैं, जैसे 60वां नियम, पहले 30वां नियम भी है उसी प्रकार का, अर्चना 61वां है, उसमें 54वां है शास्त्रों का श्रवण, तो 60 नंबर पे है अर्चा विग्रह की सेवा और 30वां है अर्चना। इस प्रकार से आप चारों को देख सकते हैं। 61 है भक्तों के बीच श्रीमद् भागवत का पाठ, और यही बात आगे भी कह चुके हैं इसके पहले रूप गोस्वामी, शास्त्रों का श्रवण 54 में, फिर 62 प्रगत भक्तों की संगति, 56 भक्तों की सेवा करना, एक ही बात है प्राय, 63 भगवान नाम का संकीर्तन, 33 संकीर्तन, और फिर 64 मथुरावास, और 55 मथुरावास। तो क्योंकि ये ज्यादा महत्वपूर्ण है इसलिए रूप गोस्वामी पाद ने इनको दोहराया हुआ है। तो आइए आगे 60वां, इसका नियम, इसका इसकी चर्चा पुनः हम कर लेते हैं। इसको यहीं पे रखिएगा, और जो अगला चार्ट है वो कृपया यहां पर कहीं लगा दीजिए। तो ये श्लोक है, बहुत ही सुंदर श्लोक है। आपने सुना है श्लोक को कभी? आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, इस किताब में भी इस श्लोक को प्रभुपाद जी कहते हैं। ये किताब तो प्राय सबसे पहले किसी को दिया जाता है जब वो कृष्ण भक्ति में आता है या उसको प्रचार करते समय कि आप ये किताब पढ़िए। स्मेराम भंगी त्रय परिचिताम साचि विस्तीर्ण दृष्टिम वंशीन्यस्ताधर किशलयाम उज्ज्वलाम चंद्रकेण गोविंदाख्याम हरितनुमित केशितीर्थोपकंठे मा प्रेक्षिष्ठस्तव यदि सखे बंधुरंगे स्थिरंग एक बार और पढ़ लेते हैं। स्मेराम भंगी त्रय परिचिताम साचि विस्तीर्ण दृष्टिम वंशीन्यस्ताधर किशलयाम उज्ज्वलाम चंद्रकेण गोविंदाख्याम हरितनुमित केशितीर्थोपकंठे मा प्रेक्षिष्ठस्तव यदि सखे बंधु संगे स्थिरंग बोलिएगा। स्मेराम भंगी त्रय परिचिताम साचि विस्तीर्ण दृष्टिम वंशीन्यस्ताधर किशलयाम उज्ज्वलाम चंद्रकेण हरितम गोविंदाख्याम हरितनुमित केशितीर्थोपकंठे मा प्रेक्षिष्ठास्तव यदि सखे बंधु संगे स्थिरंग। अभी अनुवाद तो हमने पढ़ लिया, अभी शब्द भेद करके बताइए अर्थ। ये थोड़ा कट मुश्किल है, फिर भी प्रयत्न कीजिए। स्मेराम, हल्की मुस्कान, भगवान श्री कृष्ण की, देखिए बांसुरी बजा रहे, देखिए यही इसी प्रकार का चित्र है, हल्की सी मुस्कान है भगवान के चेहरे पर। स्मेराम भंगी त्रय परिचिताम, त्रिभंग, त्रिभंग ललित, भंगी मतलब उनका शरीर बका हुआ है, त्रय परिचिताम तीन जगह कहां कहां बका हुआ है श्री कृष्ण का शरीर, दिव्य शरीर देखिए, वहां देखिए, गर्दन, फिर कटि प्रदेश और चरण, तीन जगह, इसलिए भंगी भंग है ना, बका हुआ है, इसलिए बांके भी हरी। तो भंगी त्रय परिचिताम, कृष्ण खड़े हैं तो कृष्ण के का वर्णन हो रहा है रूप गोस्वामी, वैसे गोपी के मुख से कर रहे हैं, एक गोपी कर रही है दूसरे गोपी से। साची विस्तीर्ण दृष्टिम, साची मतलब यूं सीधे नहीं, सीधे नजर नहीं, ऐसे तिरछी नजर, देखिए देख रहे हैं ना, सीधा नहीं देख रहे हैं, है ना, यूं ऐसे देख रहे हैं, तिरछी नजर से देख रहे हैं। विस्तीर्ण दृष्टिम, दूर वहां देख रहे हैं, वंशी न्यस्त न्यस्त अधर, मतलब अधर मतलब ओंठ, ओंठों पे क्या है, वंशी है, और ओंठों का वर्णन भी है किशलयाम, जैसे ट्विग्स को हिंदी में क्या कहते हैं, फ्रेश ताजे ट्विग, ट्विग ट्विग्स ट्विग्स आप समझ गए ना, ट्विग वृक्ष का ही हिस्सा होता है ना, बड जैसा अंकुर जैसा ही होता है, खैर तो बहुत ही कोमल होता है, सुंदर होता है दिखने में, नाजुक, तो है किशलयाम। तो यह है भगवान के ओठों का वर्णन। साथ साथ उज्ज्वलाम चंद्रकेण, चंद्रमा की तरह, चंद्रमा के प्रकाश में वो बहुत ही प्रकाशमान लग रहे हैं। और आगे कौन ऐसे खड़े हैं, उनका नाम क्या है, गोविंद आख्यान, उनका नाम है गोविंद, गोविंद कहा जाता है उनका, हरि तनु मितः, और उनका शरीर ऐसे दिव्य है। कहां पे खड़े हैं वो, केशी घाट में, केशी तीर्थ उपकंठे, तो केशी घाट में, केशी तीर्थ में वो विराजमान है, खड़े हैं। ये वर्णन कर लिया, ऐसे एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है गोविंद। आगे मां प्रेक्षिष्ठस, मां मतलब नहीं, प्रेक्षिष्ठस इक्षा देखना, मत देखना, वहां बिल्कुल नहीं देखना। अगर यदि सखे, हे सखे, मतलब एक गोपी दूसरे से कह रही है, हे सखी वहां बिल्कुल नहीं देखना, अगर यदि क्या बंधु संगे अस्थि रंग है, तुम्हारे संसार के सगे संबंधियों से, मित्रों से वगैरह कोई आसक्ति है रंग, तो वहां उस व्यक्ति के पास बिल्कुल नहीं देखना। समझ गया, मां प्रेक्षिष्ठ चेतावनी दे रहे हैं, अगर इस संसार से कोई भी आसक्ति है या बनाए रखना चाहते हो, मैं चेतावनी दे रही हूं, वहां बिल्कुल देखना नहीं, वहां देखोगे तो क्या होगा, आसक्ति खत्म हो जाएगी, फिर हमें नहीं कहना कि ऐसा कुछ हो गया है, संसार खत्म हो गया, ऐसा नहीं कहना। तो इसमें निषेध है, भगवान को नहीं देखें, तो ये भी भक्ति होगी है? भक्ति में तो कहा जाता है ना कि भगवान को देखो, फिर यहां तो निषेध हो गया, विधि नहीं, ये निषेध है ये, तो फिर ये कैसे भक्ति हो गया, बताइए। ये श्लोक यहां पे कह रहे हैं प्रभुपाद जी,
पहले तो इतना सुंदर वर्णन कर दिया,
फिर कहा नहीं जाना, नहीं देखना। मां प्रेक्षिष्ठस, तो ये भक्ति का अंग कैसे हो गया,
ये बताई गई है
यार, तो ऐसे पे गृह से रहेंगे कैसे, भक्ति कैसे करेंगे। ये कविता का एक एक नियम है कि जब आप किसी चीज के ऊपर जोर देना चाहते हैं कि ये कितना अधिक आपको करना चाहिए, आप उल्टा कहते हैं उससे, हाँ बिल्कुल सही, जिसकी स्तुति हम करना चाहते हैं उसको निंदात्मक दृष्टि से हम प्रस्तुत करते हैं। तो जब रूप गोस्वामी मना कर रहे हैं, हमें पता होना चाहिए कि रूप गोस्वामी की इच्छा वास्तव में इसके विपरीत है, वो चाहते हैं कि हम जाके देखें, ठीक है ना,
अक्सर किसी चीज के लिए मना किया जाता है तो उत्सुकता
बढ़ती है उसी चीज को करने के लिए। तो देखिए यहां खड़े हैं, मत देखिए ऊपर। मां प्रेक्षिष्ठस, देख लिया, अभी आपका घर खत्म। नहीं, लेकिन ये वैष्णव के लिए नहीं है, क्योंकि सभी लोग परिवार में वैष्णव होते हैं तो वे सभी इकट्ठे उनका दर्शन कर सकते हैं। तो ये है 60वां भगवान के सुंदर रूप का वर्णन और भगवान के दर्शन का। तो हालांकि अर्चव विग्रह के दर्शन का वर्णन है वास्तव में, लेकिन इस श्लोक में वृंदावन में विराजे केशी घाट के ऊपर विराजे हुए कृष्ण का वर्णन, परंतु एक ही है क्योंकि विग्रह और भगवान में कोई अंतर नहीं है। अच्छा, तो प्रभुपाद जी इसका तात्पर्य दे रहे हैं अगले पैराग्राफ में, पढ़िएगा। इसका मतलब है कि जीव का स्वभाव है आसक्त होना। इस समय बद्ध अवस्था में जीव संसार के वस्तुओं के प्रति और संसार के लोगों के प्रति आसक्त है। तो इस आसक्ति को अगर हमें निकालना है, इसको शून्य करना है, तो तरीका एक ही है कि हम श्री कृष्ण के प्रति उस आकर्षण को या उस आसक्ति को स्थानांतरित करें। हमारा उद्देश्य बल्कि वही है कि हम श्री कृष्ण के प्रति आसक्त हो जाएं। और अगर कोई व्यक्ति कहता है कि इस संसार के जो आसक्तियां हैं उनसे मुक्त होना बहुत ही मुश्किल है, तो रूप गोस्वामी कहते मुश्किल नहीं है, केवल अपनी आसक्ति श्री कृष्ण के सुंदर रूप में केंद्रित करो। स्वाभाविक रूप से खुद ब खुद संसार से आसक्ति उठ जाएगी। ठीक है। और आगे फिर 61वां श्रीमद् भागवत का पाठ, ये हम कल चर्चा करेंगे। ठीक है। तो कोई प्रश्न? वो एतन निर्विद्यमाना नाम, वही ना, उसी श्लोक का ना, तत्पर शुरुआत में ही ना। हाँ, तो अनुरक्त तो होना चाहिए। जब धीरे धीरे से हम अभ्यास करते करते हरि नाम के जप और कीर्तन में परिपक्वता को प्राप्त करेंगे, तब वो अनुराग उत्पन्न हो जाएगा हमारे मन में नाम के प्रति। तो अनुराग उत्पन्न होने से फिर सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। ये तात्पर्य है कि हमें निरंतर करने का प्रयास करना चाहिए और भक्ति भाव से। वही अनु शब्द कहा ना, अनु अनु है ये, अणु नहीं, अनु। अनुकीर्तनम, हरे नामानुकीर्तनम, अनुकीर्तनम। अनु के कौन से अर्थ, कितने अर्थ बताए? एक निरंतर। उनका अनुशीलन करना, पूर्व आचार्यों का अनुशीलन करना। तीसरा, भक्ति भाव से करना, क्योंकि भगवद गीता प्राथमिक ज्ञान है भक्ति का। भक्त को चाहिए कि वो पहले भगवद गीता सीखे अवश्य, परंतु उस जमाने में क्या होता था कि बचपन में ही सभी लोग सीख लेते थे भगवद गीता। आजकल बच्चे भगवद गीता नहीं सीखते, टेलीविजन के विज्ञापन को सीख जाते हैं, है ना। और गीता में सबसे पहले यह सिखाया जाता है, हम आत्मा है, शरीर नहीं है, कर्म योग, ज्ञान योग। भगवद गीता का अंत है भगवान के शरण में जाओ, और भागवत की शुरुआत है शरणागति। तो जहां श्रीमद् भगवद गीता की समाप्ति होती है, वहां से श्रीमद् भागवत की शुरुआत होती है। और फिर भक्ति, शरणागति के ऊपर कैसे भक्ति आधारित है, ये भागवत में दिया है। और भागवत का अंत है वृंदावन के निवासियों का और विशेष करके गोपियों का कृष्ण प्रेम। ठीक है। तो गोपियों ने कैसे, या ब्रजवासियों ने कैसे, महान भक्तों ने कैसे प्रेम किया श्री कृष्ण को, वो उसका वर्णन है। और आगे चल के चैतन्य महाप्रभु की लीला से हम सीख सकते हैं कि हम कैसे उसी भक्ति को कर सकते हैं। ठीक है। تو کل شاید 3:30 کو ہم نہیں آ پائیں گے, ہو سکے تو آپ کے کلاس کل کتنے بجے ہے؟ گیتا کلاس کل ہے آپ 10:30 سے 12:30 ہے کلاس؟ اچھا, تو کل تھوڑا جلدی مل لیں ہم. ویسے سمسیا آپ کی نہیں, سمسیا ہماری ہوتی ہے, ہم ہمیشہ لیٹ آتے ہیں, آپ تو صحیح سمے پر آ ہی جاتے ہیں. تین بجے, 3 سے 5 پریاس کریں گے, ٹھیک ہے؟ 3 سے 5 کل. شریل پربھوپاد کی جائے, شری بھکتی رسامرت سندھو کی جائے, شری روپ گوسوامی کی جائے, گور پریمانندے.